कुंदकुंदाचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के निर्जरा अधिकार के हमारी 197 नंबर की गाथा चल रही है। यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा ज्ञानी जीव सेवक होते हुए भी असेवक ही है इस बात की पुष्टि करा रहे हैं। हम पृष्ठ क्रमांक 49 पर आए हैं। पहले लाइन से चालू करते हैं। पूर्व संचित कर्मना उदय थी प्राप्त विषयों ने, एम कहूं ने, त्या विषयों अर्थात सामग्री तो पोताना उपादानना कारणे प्राप्त थई आवी छे, पण तेमा निमित्त कोण छे? तो कहे छे के पूर्व संचित कर्म। बस आ निमित्तनु ज्ञान करावा व्यवहारथी कहूं के पूर्व संचित कर्मना उदय थी विषयों प्राप्त थया छे। खरेखर तो सामग्रीना परमाणु તે કાળે સ્વતંત્ર રીતે પરિણમન એટલે ગતિ કરીને સંયોગ પણ આવ્યા છે। સમજાણું કાંઈ? દેખો ક્યા કહે રહે હૈ, યહાં તો હમ હમેશા હમે જો વિશ્વ મેં સબસે જો પ્રિય હૈ વો પૈસા હૈ। હા, તો યહાં તો કહેતે હૈ યે જો પૈસા જો આ રહા હૈ तो वो पूर्व संचित कर्म के निमित्त से आ रहा है। देखो यहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे कर्म बांधे हैं, पुण्य बांधा है, यह भी व्यवहार का कथन है कह रहे हैं। क्या यहाँ तो समझा रहे कि जो कोई पैसा रूपी जो परमाणु है वो उनके परिणमन या गति की अपेक्षा से यानी क्रियावती शक्ति से दूसरे किसी के जेब में से मेरे पास आए हैं, ख्याल में आया? तो ये तो कहते हैं कि ये पुण्य कर्म जो है उस पूर्व कर्म, पूर्व संचित कर्म, उसके निमित्त से आना ये कहना भी उपचार है। आते तो है अपने स्वयं के कारण और जाते भी है अपने स्वयं के कारण, और हम व्यर्थ ही खेद खिन्न होते हैं। बहुत पैसा मिले तो खेद होता है क्या? नहीं क्या? आपका क्या कहना है? हाँ, आप बोलती है हाँ हाँ होता है होता है, और आप चुपचाप हंसती है, यानी आपको नहीं होता है खेद। हाँ, देखो देखो बात ऐसा है। हाँ, देखो बात ऐसी है के पर पदार्थ ना तो इष्ट है अनिष्ट है, अभी हमने देखा, और हम पैसे में तो बहुत इष्टता मानते हैं लेकिन वह भी दुख का कारण है। अब क्या कहें, अभी हमने तो पेपर में भी पढ़ा और देखा भी है कि बीच में बहुत सबके घरों में ये क्या बोलते हैं रेड पड़ता था, ये इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, इनकम टैक्स वाले खास करके आते थे तो ऐसे पोटला बांध बांध कर ऊपर से नीचे फेंक देते थे पैसों के नोट। वो गए वांदा नहीं है, पर आपने को पकड़े तो जेल खाना पड़े, ऐसी बात है। और जैसा आपने बताया बहुत पैसा आ गया तो किधर रखे, कैसा सेफ रखे, और अभी आए तो थोड़ा सा तो बढ़े कम से कम, नहीं अधिक से अधिक, क्या बोलते हैं ब्याज कौन देता है, फिर एक के चार बनाने वाले के पास जाते है वो भी निकल जाता है। एक अभी एक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट था, क्या नाम है, झाड़ झाड़ उगाते थे, ऐसा कोई था, तो बोले उसे इतने दिन में इतना पैसा होता है, तो सब दौड़े तो झाड़ के हाथ में खड्डा भी नहीं मिला जमीन का। ऐसा मुझे तो बिल्कुल ख्याल है, ये यूटीआई का गेन मास्टर गेन 92, अरे दो महीने में तीन महीने में तिगुना पैसा होगा, ऐसा सब हवा चली थी। और बहुतों ने मूर्खाई की, उसमें हम भी थे, गए सब के सब, 10 साल के बाद जितने इन्वेस्ट किए उसमें भी चारणा कम मिले 10 साल के बाद। यानी क्या है, ये जो आते हैं वो अपने कारण और जाते हैं वो अपने कारण, कहेंगे पूर्व संचित कर्म के कारण से, लेकिन दोनों में भी अन्योन्याभाव है ना। ये पैसा जो है कौन सा वर्गण है भाई, अरे इतना टाइम लगे, देखो देखो, और कारमान वर्गण, दोनों में अन्योन्याभाव है। ये हम मूल बात समझते हैं ना भाई, तो हमें आने से भी बहुत आनंद नहीं होगा और जाने से भी बहुत दुख नहीं होगा, होगा दुख क्योंकि अभी कहां वितराग बने हैं, ख्याल में है ना, लेकिन फिर हम अपने को संभाल सकेंगे, हम अपने को ही तसल्ली दे पाएंगे, ख्याल में, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा क्या प्रयोजन है। ये तत्वों की बात समझकर हम अपने को संभाले, फिर अपने बाजू वाला यानी अपने घर का कोई दूसरा सदस्य होवे तो उसको भी संभालने का हमारा भाव आवे, वो बात जुदी है, वो पर मूल में तो ऐसा है कि हम अपने को कैसा हम ठीक ठाक रख सकते हैं, ये तत्वों के माध्यम से ही हम सीख सकेंगे। देखो अभी आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या कहा, पूर्व संचित कर्मना उदय थी विषयो प्राप्त थया छे, खरेखर तो सामग्री ना परमाणु ते काले स्वतंत्र रीते परिणमन गति करीने संयोग पने आया छे। अभी देखो मैं सच कहता हूँ, कभी कभी खाना खाते हैं हम, तो खाने में सब्जी क्या बोलते हैं बहुत पक्की हो जाती है मतलब, और कभी कच्ची रह जाती है, कभी जल जाती है रोटी, समझना कि ये संयोग उस रूप में आज हमारे पास आए हुए हैं। ये विशेष रूप से देखो, अब जब हम देवलाली जाते हैं ना, तो वहां तो थाली में रखी हुई रोटली उठा के उधर रखते, उधर से दूसरी लेते, ये लोगों को हमने देखा, भोजन चलता है ना उधर, सब जो बुफे पार्टी रहती है सबकी, मतलब बुफे खाना है तो पहले तो ले लेते हैं, और इतने में सामने से दूसरा नया सप्लाई आया तो उठा के उधर डाले, उधर का अंदर ले। तो नहीं तो जेने जे आवान हो तू ते आयो मैं शू करियो, ऐसा बोलना नहीं। क्या मैं क्या कहता हूं, ऐसी स्वच्छंदता नहीं करनी चाहिए भाई, तेरे ऐसा ही था तो मिला तो खा ले, नहीं मिचो नहीं मत खाना, तेरे को नको बोले। लेकिन ये क्या बोलते हैं, जो खाने की गृद्धता है वो ये ऐसा विचार करने ही नहीं देता है। त्यारे अज्ञानी ना वांदे, अज्ञानी ने वांदा उठे छे के कर्मना निमित्त थी कार्य थाय छे एम न माने तो भगवानना निमित्त थी शुभ भाव थाय छे इत्यादि बात उड़ी जाय छे। अरे भाई कल हमने भगवान की बात देखी थी ना, भगवानना निमित्त थी शुभ भाव थाय छे एम केहूं, ए तो व्यवहार नयनु कथन छे, जेने पोताना अशुद्ध उपादान ना करने शुभ भाव थाय छे। देखो यहां शुभ भाव होना भी क्या कहा है, अशुद्ध उपादान है हाँ, और शुद्ध उपादान होगा तो कौन से परिणाम होंगे भाई, हाँ शुद्ध भाव शुद्ध परिणाम या वितराग परिणाम बरोबर। तो कहते जेने पोताना अशुद्ध उपादान ना कारणे शुभ भाव थाय छे तेने भगवान निमित्त छे, बस एटलूज, शू भगवान शुभ भाव करावी दे छे। ऐसा अगर हम माने कि भगवान ही शुभ भाव करा देते हैं तो हमने भगवान का भगवानत्व रखा के नहीं जगह पे, अरे उसको तो रागी बना दिया, ख्याल में आया ना? ना एम नथी, भगवान करता अने तने शुभ भाव थाय ते कार्य एम छेज नहीं। देखो स्वामी जी ने एक नया ये दिया है, कर्ता कर्म संबंध अपने द्रव्य के अपनी पर्याय के साथ होता है, ख्याल में है ना? अरे भगवान शू थयू तने, मान समझवाना टाणा आव्या छे, त्या पीठ फेरवी ने उभो केम उभो छे? सम्यक दृष्टि, पूर्व कर्मना उदय थी प्राप्त विषयों ने सेवे छे अने छता असेवक छे। भाषा जोई, विषयों तो पोत पोताना कारणे आव्या छे, पण तेवा पूर्व कर्मनो उदय निमित्त छे, तो पूर्व कर्मना उदय थी विषयों प्राप्त थया एम व्यवहार थी कयूं, वळी ते विषयों ने सम्यक दृष्टि सेवे छे एम कयूं, तो शू परने सेवी सकाय छे? कदी नहीं। तो कयूं छे ने भाई, ए तो पर विषयों प्रति थता राग ने ते खरेखर सेवे छे, ते विषयों ने ते सेवे छे एम व्यवहार थी केवामां आयमू छे। खरेखर तो ज्ञानी विषयों तरफनो एने जे रागांश थाय छे तेने सेवे छे विषयों ने नहीं, पर विषयों ने तो ए अड़तो ए नथी। देखो कितना बड़ा सिद्धांत ये एक पैराग्राफ ने उन्होंने बता दिया। यहां बार बार लिखते हैं वो, ज्ञानी तो विषयों तरफ ने एने जे रागांश छे तेने सेवे छे, और अज्ञानी पण एम ज छे हो, पण ए मिथ्याज्ञान ने पण सेवे छे एनी साथे साथे। पण आई बीजी वात छे, आई तो कहे छे ज्ञानी विषयों ने सेवतो थको असेवक छे। झीणी वात भाई, ज्ञानी ने रागादी भावोनो अभाव छे, जेने चिदानंद रस स्वरूप चिदानंदमय सच्चिदानंदमय भगवान आत्माना आनंदना रसनो स्वाद आव्यो छे, चाख्यो छे, एवा धर्मी जीवने रागना रसनी रुचि नथी, तेथी तेने विषयोनो स्वाद लुखो अने बेस्वाद कड़वो झेर जेवो लागे छे। तेथी कहूं के ज्ञानी विषयोने सेवे छे छता असेवक छे। अज्ञानी जीव अभिप्राय ने समझे नहीं, कया नयनु कथन छे ते समझे नहीं, एटले एने वाते वाते वांदा उठे छे। परंतु भाई, दरेक वातमा शब्दार्थ आगमार्थ नयार्थ इत्यादि प्रकारे अर्थ करूं करी तेनु रहस्य अने तात्पर्य काढ़वू जोईए। भाई घीनो घड़ो एनी माफक व्यवहार थी संक्षेप में जे कथन करेलो होय तेनो यथास्थित अर्थ समझवो जोईए। यानी घीनो घड़ो कहने से क्या समझना, कि जिस घड़े में घी रखा हुआ है उसको घी का घड़ा कहने में आ रहा है। इतना सब बनने के बाद क्या बोला, घीनो घड़ो एनी माफक व्यवहार थी संक्षेप में जे कथन करेला होय तेने यथास्थित अर्थ समझवो जोईए। अभी समझ में आया ना, यानी जिस प्रकार से जो कहा है वो समझना। भगवान आत्मा त्रण लोकनो नाथ सच्चिदानंद स्वरूप छे, अज्ञानी ने ते रागनी रुचिनी आड़मा जणातो नथी। आहा हा, जळनी अपार राशिथी भरेलो मोटो समुद्र जेम के एक कपड़ानी आड़मा देखाय नहीं, तेम अज्ञानी जीवने रागनी रुचिनी आड़मा पोतानो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा देखातो नथी। जो देखो उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया है। ये कह रहे के समुन्द्र में तो पानी इतना है इतना है, उसके सामने पूरा एक अपने पास हैंडकरचीफ है, समझो कपड़ा है छोटा, वो भी अपने आंखों के सामने आ गए तो पूरा का पूरा ढक जाता है। वैसा ये इतना अफाट ऐसा जो अपना स्वभाव है, उत्तुंग ऐसा जो अपना स्वरूप है, वो बीच में राग आ गया ना पर पदार्थों का, तो उसे वो दिखाई नहीं देते। जो आ सेठिया बदा बारना वैभवना रागमा चकचूर छे ने, તેમને ભગવાન આત્મા ભળાતો નથી। આહાહા, કોઈ મોટો શેઠ હોય, રાજા હોય કે દેવ હોય, જો તેને પોતાના ચિદાનંદમય સ્વરૂપને છોડીને પૂર્વના કર્મના ઉદયના નિમિત્તે પ્રાપ્ત વૈભવની દ્રષ્ટિ છે તો તે મરીને તિર્યંચ આદિમાં જવાનો। પરમાત્મા પ્રકાશમાં આવે છે ને કે પુણ્યેન હોઈ વિહવો ઇત્યાદિ, પુણ્યના ઉદય વૈભવ મળે। એ બહુ અચ્છા વાત હૈ, દેખો બિલકુલ યાદ કરીને જૈસા હૈ, ક્યા કહેતે હૈ, પુણ્યના ઉદય વૈભવ મળે, વૈભવથી મદ ચડે અને મદથી મતિ ભ્રષ્ટ થઈ જાય। એ તીન બાતે બતાવી ને, એ પરમાત્મા પ્રકાશ કિસને લિખા હૈ માલુમ હૈ નલિનભાઈ? હમરે લક્ષ્મી કો માલુમ હોગા પરમાત્મા પ્રકાશ કોણ જાનતા હૈ? પરમાત્મા પ્રકાશ યોગિન્દુ દેવને દોનો થી દેખો યહાં ક્યા કહે રહે હૈ।
યોગિન્દુ દેવ કા તીસરા ગ્રંથ કોણ સા હૈ? પહેલે મેને એક બાર બતાયા થા, અમૃતાશીતિ, અશીતિ યાની 80 શ્લોક હૈ ઉસમે, ઉસકો અમૃતાશીતિ નામ દિયા હૈ।
और एक इसमें और एक ऐड था, लेकिन ये तीन ही बताए उन्होंने। पुण्य ना उदय ने उदय, पुण्य का उदय है उसके कारण इसको वैभव मिलता है, और वैभव से इसको मान यानी मद चढ़ता है, और मद से मति भ्रष्ट हो जाती है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं अमे आवा वैभव वाला एम परमाहम बुद्धि एटले मद थता मति भ्रष्ट थी जाए, અને તેથી તે મરીને નરક તિર્યંચ આદિ દુર્ગતિને જ પ્રાપ્ત થાય છે, ચાર ગતિમાં રખડી મરે છે। આપ કહો છો કે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થનું કાંઈ ન કરે તો પછી વૈભવથી મદ કેમ ચડે? એક પદાર્થ બીજા પદાર્થનું કાંઈ ન કરે એ તો સત્યાર્થ એમ જ છે। પોતે મત કરે, બહારમાં અહંભાવ કરે એટલે એકત્વ બુદ્ધિ કરે, ત્યારે બાહ્ય વૈભવને લક્ષ્ય કરીને કરે છે તો વૈભવથી મદ ચડે છે, એમ વ્યવહારથી કહેવાય છે। વૈભવ મત કરાવે છે એમ વાત નથી, વૈભવથી મદ ચડે એ તો નિમિત્તે બતાવનારું કથન છે। જો વૈભવથી મદ થઈ જાય તો સમકીતી ચક્રવર્તીને પણ મદ થઈ જવો જોઈએ। ભરત ચક્રવર્તી 6 ખંડના વૈભવનો સ્વામી હતો, 96,000 તો તેને રાણીઓ હતી, પણ એને એમાં ક્યાંય આત્મબુદ્ધિ એટલે અહંપનાની બુદ્ધિ ન હતી। સમ્યક દ્રષ્ટિ તો એમ જાણે છે કે જ્યાં હું છું ત્યાં રાગ શરીર કે બહારના વિષયોનો અભાવ છે, અને જ્યાં રાગ શરીર કે બહારના વિષયો છે ત્યાં મારો અભાવ છે। વિષયોને સેવતો હોય તે કાળે પણ તેને આવા જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાન હોય છે। અહીં કહ્યું ને કે સમ્યક દ્રષ્ટિ વિષયોને સેવતો હોવા છતાં રાગાદી ભાવોના ભાવને લીધે વિષય સેવનના ફળનું સ્વામીપણું નહીં હોવાથી અસેવક જ છે। જુઓ, જ્ઞાનીને કિંચિત રાગ થાય છે પણ એનું એને સ્વામીપણું નથી, માટે તે સેવતો છતાં અસેવક જ છે। આહાહા, જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી પોતાની વસ્તુનો અનુભવ થતા જે અતિન્દ્રિય આનંદનો શાંતિનો વૈભવ પ્રકટ થયો તેની આગળ ધર્મીને બાહ્ય વિષયો ફીકા એટલે રસહીન લાગે છે। સમકીતિ ઇન્દ્રને ઇન્દ્રાસનમાં કે કરોડો અપ્સરાઓમાં ક્યાંય રસ નથી। આત્માના અનાકુળ આનંદના રસના સ્વાદ આગળ તેને બીજું બધું બેસ્વાદ ઝેર જેવું લાગે છે। કદાચિત રાગની વૃત્તિ થઈ આવે तो पण ते विषयों ने काळा नाग समान जाणे छे। શું કાળા નાગના મોમાં કોઈને આંગળી મૂકવાય મૂકવાનો ભાવ થાય ખરો? ક્યાં કહે રે? ન થાય તેમ જ્ઞાનીને રાગમાં અને વિષયોમાં મીઠાશ ન હોય માટે વિષયોને સેવતો છતાં તે અસેવક જ છે। સ્વામીજી કોઈ કે કહાં સે એસે ઉદાહરણ મિલતે कि काले नाक के मुंह में कोई उंगली डालेगा कि नहीं बोलते हैं। अने मिथ्या दृष्टि विषयों ने नहीं सेवतो होवा छता रागादि भावोना सद्भाव ने लीधे विषय सेवनना फलनु स्वामीपणु होवाथी सेवक छे। ये देखो हमको अभी मालूम है ना, ये बहुत बहुत बार अपनी बात हुई है कि ये जो महामत्स्य होता है उसके पास एक तंदुर मत्स्य होता है, एकदम छोटा होता है, और वो वो जो हमारा महामत्स्य है वो जब बहुत बड़ा श्वास लेता है सोते सोते तो उसको मुंह में कितने छोटे छोटे मछलियां अंदर जाती हैं, और जैसा श्वास छूट जाता है सब बाहर आ जाते हैं। तो ये सोचता कैसा मूर्ख है, मेरे मुंह में आ जाए तो मैं एक को भी नहीं छोड़ू, ऐसे ही सोचते सोचते जाता है सातवीं नरक में। तो देखो लोगों को आश्चर्य लगता है, क्यों, किस बात का आश्चर्य? अभी अपना विषय वो नहीं है लेकिन आश्चर्य लगता है कि हमने तो ऐसा सुना है कि सातवें नरक में जाने वाले जीव के वज्र ऋषभ नाराज सहनन रूप शरीर होता ही है, तो इतना सा तंदुल मत्स्य और उसके भी वज्र ऋषभ नाराज है। हाँ है, ये कायदा ही बताता है कि जो नरक जाता है सातवीं नरक, हाँ ये सातवीं नरक जाने वाले कौन से गति से जाएंगे मम्मी, कौन से गति से वहां जीव जाते हैं? चार गति है ना, तो सातवें नरक में से सातवें नरक में जाएगा कि नहीं? हाँ, मनुष्य अथवा तीरंच। और वज्र ऋषभ नाराज सहनन किसको होगा? मनुष्य ने देवों को। हाँ, और अरे हो एटले तो ई मत्स्य छे ना, ई पण त्यां जाय छे। हाँ, ये तकलीफ है ना, और वो भी इतना हमको लगता है वज्र ऋषभ बोले तो 500 धनुष ऊंचा ऐसा तगड़ा ये ऐसा होगा, कुछ नहीं ख्याल में है। तो यहाँ क्या कहते, ये बात क्यों उठाई मैंने, मिथ्या दृष्टि विषयों ने नहीं सेवतो छता, वो तंदुल मत्स्य इतना भी नहीं खाता है, एक भी मछली पेट में नहीं जाती उसकी। तो ये मिथ्या दृष्टि कैसा है, वो तो विषयों का सेवन नहीं करता है छता रागादि भावों ना सद्भाव ने लीधे, सिर्फ विचार करे वो फिर भी विषयों ना विषय सेवन ना फलनु स्वामीपनु हुआ थी, यानी उसको ऐसा भाव है ना कि मैं इनका इनको भोग सकता हूँ तो एना फलनु स्वामीपना हुआ थी ए सेवक कच्चे। अभी वो मत्स्य को भूल जाना, यहाँ तो सेवक और असेवक की जो बात चल रही ना वो बात लेना। शू कहूं कि अज्ञानी भले सामग्री ने सेवे नहीं, यानी देखो अभी हम ऐसा लेते हैं कि अभी मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा महल है और राजा के पास बहुत सारी संपत्ति है, अब वो राजा सम्यक दृष्टि है और उसको इस संपत्ति के प्रति कोई मतलब लगाव नहीं है, उदासीनता है। अभी बात आई थी ना 96,000 रानियों चक्रवर्ती, और कोई भिखारी सामने खड़ा होए और उसको लगे कि अरे मेरे पास ऐसा होता तो मैं कितने मजा करता, ऐसा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, मेरे पास चाहिए था, ऐसे उसके बारम्बार उसके प्रति राग चल रहा है, तो परिग्रह कौन है, परिग्रही कौन है? ख्याल में, तो कहेंगे वो भिखारी, उसके पास पूरे शरीर ढकने को कपड़े भी नहीं होंगे लेकिन उसकी चाहत इतनी बड़ी है तो वो चाह ही पहले परिग्रह है। क्यों? एक तो मिथ्यात्व है और बाद में चार प्रकार के कषाय भी है ना वहाँ, तो उसमें लोभ भी है, सब है, तो वो परिग्रह तो किसको दिखता नहीं है, लेकिन बाह्य में जो कुछ दिखता है वो परिग्रह। अभी आजकल हम देखते हैं ना, अब कोई भी टीवी सीरियल में देखो या पिक्चरों में देखो, एक एक हीरो या हीरोइन के दसे उंगली पे दसे अंगूठियां होती है, एक एक अंगूठी होती खोटी लेकिन वो रखता क्यों है कि दूसरे समझो ये सच्ची है, तो परिग्रह का भाव है भाई उधर क्या है? तो वो यहां वही कह रहे, अज्ञानी भले सामग्री ने सेवे नहीं, पन अंतरमा तेने रागना रस रुचि पड़िया छे, तेने विषय सेवन नो अभिप्राय मट्यो नथी, तेने सविशेष राग शक्ति अस्थि बनी रहेली छे, जे वड़े ते राग नो स्वामी थाई छे। आ कारणे अज्ञानी ने अनसेवतो थको पन, अज्ञानी अनसेवतो यानी सेवन नहीं करता हुआ पन सेवक छे, ज्ञानी सेवतो थको असेवक, अने अज्ञानी अनसेवतो थको सेवक, पाठ तो आवो छे भाई। तो प्रश्नकार पूछते हैं उनको, तमो पाठ ना बीजा अर्थ करो छो, भले कर्म ने लईने नहीं तो पन ज्ञानी ने राग नो भाव तो कांईक आवी जाय छे। आगळ गाथा 194 માં આવી ગયું છે કે જ્ઞાની પણ કર્મના ઉદયને એટલે શાતા શાતાને ઓળંગતો નથી અને તેને પર્યાયમાં સુખ દુઃખ વેદાય છે, તો પછી તેને અસેવક કેમ કહ્યો? સેવે છે છતાં અસેવક છે એમ કહેવું શું જૂઠું નથી? સ્વામીજી કો ભી કોઈ મિલા એસા પૂછને વાલા? બાપુ એમ નથી ભાઈ, ધર્મીજી એને કહીએ જેને અંતરમાં આત્મસંવેદનમાં અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદનું વેદન થયું છે, એ ધર્મી કા અહીંયા ડેફિનેશન દિયા ક્યાં કહેતે ધર્મી જીવ કિસકો કહેના? કે જેને અંતરમાં આત્મસંવેદનમાં અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદનું વેદન થયું છે, આ વ્રત કરે ને તપ કરે ને ભક્તિ કરે માટે તે ધર્મી છે એમ નથી, કેમ કે એ તો બધો રાગ છે, આ તો સર્વરાગના વિકલ્પથી ભિન્ન પડીને નિર્વિકલ્પ આનંદ રસના સ્વાદને જેને ચાખ્યો છે તે ધર્માત્મા છે। ક્યાં કહા? આનંદ રસના સ્વાદને જેને ચાખ્યો છે તે ધર્માત્મા છે, એટલે ધર્મી છે। આવા ધર્મી જીવને રાગના રસ એટલે રુચિ નથી, રાગનું ધનીપનું નથી, આખું વિશ્વ તેને પરપદાર્થ તરીકે ભાસે છે, તેથી તેમાં તેને રસ નથી। વિશ્વ છે, કિંચિત રાગ છે, પણ એમાં એને રસ નથી, રુચિ નથી, સ્વામિત્વ નથી, તેથી કહ્યું કે સેવક છતાં અસેવક, ભોગતા છતાં અભોગતા। ગજબ વાત છે ભાઈ। અહો વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો ધર્મ અદ્ભુત અલૌકિક છે, આવી વાત બીજે ક્યાંય નથી। અરે એના સંપ્રદાયવાળાને પણ ખબર નથી તો બીજાનું તો શું કેવું? ક્યાં કહેતે? દેખો દેખો એના એટલે કોના? કે વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો જે કઈ માર્ગ છે એ જે એમને બતાવ્યો છે એમાં જન્મેલા કહો એવા જીવોને ખબર નથી એમ કે છે। પણ આ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યની ગાથાઓ છે અને તેના અર્થ ટીકા મહાન સમર્થ આચાર્ય શ્રી અમૃતચંદ્ર દેવે કર્યા છે। તેઓ પાંચમી ગાથામાં કહે છે ને કે અતિન્દ્રિય આનંદને જ્ઞાનના વૈભવનો અમને પર્યાયમાં જન્મ થયો છે। આ 550,00,000 રૂપિયા અને રૂપાળું શરીર ઇત્યાદિ તો જડનો ધૂળનો વૈભવ છે, એ કઈ નિજો વૈભવ નથી। મુનિરાજ કહે છે જેમ ડુંગરમાંથી પાણી ઝરે છે તેમ અતિન્દ્રિય આનંદ રસથી ભરેલા ત્રણ લોકના નાથ ભગવાન આત્મામાંથી અમને પર્યાયમાં પ્રચુર આનંદનો રસ ઝરે છે અને એ અમારો નિજ વૈભવ છે. અમારો નિજ વૈભવ અતિન્દ્રિય આનંદની મોહર મુદ્રાવાળો છે. આહા, શું વૈરાગ્ય, શું ઉદાસીનતા. દેખો યહાં તો જૈસા કહેતે ના કે રાજા હોગા, પહેલે કે જમાને મેં એસા થયા કે કોઈ ફતવા નિકાલે, હુકમ નિકાલે તો ઉસકે પર રાજ મુદ્રા રહેતી થી. હા, વૈસે યહાં કહે કે હમારે પાસ ભી ક્યા હૈ, અતિન્દ્રિય આનંદ કી મુદ્રા હૈ ઓર ઉસકે હી કારણ હમ આપકો યે બાત બતા રહે હૈ, કહે રહે હૈ. આ અમારો નિજ વૈભવ છે. અન્ય મતમાં પણ વૈરાગ્યની વાત આવે છે ને, ત્યાં અંતરદૃષ્ટિ નથી પણ બહારમાં વૈરાગ્ય લાગે એવું હોય છે. ભર્તૃહરિની વાત આવે છે કે 92 લાખ માળવાને અધિપતિ ભર્તૃહરિ ખાઓ બાવો થઈ જાય છે અને ત્યારે કહે છે, એ ભાઈ હમકો કથા માલુમ નહીં, આપકો માલુમ હૈ તો દેખો, યાને ભર્તૃહરિ ક્યા હોતા હૈ, વો 92 લાખ માળવાનો યાને ઉતને પ્રાંત ઉસકા અધિપતિ હો જાતા હૈ ઓર ફિર બાવો થઈ જાય છે. ત્યારે કહે છે, દેખા નહીં કછુ સાર જગત મેં, દેખા નહીં કછુ સાર, પ્યારી અતિ મેરી પિંગલા કરે અશ્વ પાલકો યાર, દેખા નહીં. અરે રે, આ સંસાર માળવાધિપતિની રાણી એક અશ્વપાલ થી યાદી કરે, યારી કરે. અશ્વપાલ ની અને ઘોડે કો સંભાળને વાલે,
ઘોડે પાલને વાલે છે ને. દેખો યે ભર્તૃહરિ કે તો શતક આતે, નીતિ શતક, વૈરાગ્ય શતક, એસે તીન શતક હૈ ઉસકે સંસ્કૃત મેં. તો ઉસમે એસે શ્લોક લિખા હૈ ઉસને કે ઉસને રાની કે પ્રતિ બહોત પ્યાર થા ના, તો કોઈ એક ચીજ ઉસને અપને રાની કો દી, તો રાની કા પ્યાર તો વો અશ્વપાલ કે સાથ થા, તો ઉસને વો ચીજ ઉસકો દે દી, તો અશ્વપાલ કા ઓર કિસી કે સાથ થા, દાસી યા જો કોઈ એસી હતી ઉસકે ઉસકો દે દી, ઓર વો લોટ કે ફિર એસે રાજા કે પાસ આતા, તો ઉસકો તો ઉસકો વૈરાગ્ય આતા. યે ક્યા બાત હૈ સારી ઇસ તરહ સે. સંસ્કૃત મેં ઉનકે કાર્ય ભર્તૃહરિ કે કાવ્ય બહોત પ્રસિદ્ધ હૈ.
तो इसलिए कह रहे, देखा नहीं कछु सार जगत में, सारभूत इस विश्व में कुछ नहीं है, कुछ सार रूप है ही नहीं तो क्या दिखे. कहते हैं प्यारी अति मेरी पिंगला, ये नाम रानी नु नाम पिंगला तू, करे अश्वपाल को यार, यानी वो रानी होते हुए भी वो अपने जो हम कहते ना कोचमन अश्वपाल करने वाला, अश्वपाल यानी जो अपने घर में 150 घोड़े हुए તો ઉસકો સંભાળને વાલા કોઈ હોતા હૈ ને, તો અશ્વપાલ. આ સંસાર માળવાધિપતિની રાણી એક અશ્વપાલથી યારી કરે છે. અરર, આ શું શું આ સંસાર. આમ ભારતીય વૈરાગ્યનું ચિંતવન હોય પણ એ તો માત્ર મંદરાગની અવસ્થા છે અને તે ક્ષણિક છે. જેમ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માના જ્ઞાન શ્રદ્ધાન હોય અને જેમાં અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થાય તે દશા સાચી આનંદ વૈરાગ્યની દશા, અંતર વૈરાગ્યની દશા છે. અને તેના બળથી અહીં જ્ઞાનીને સેવતો છતાં અસેવક કહ્યો છે. સમજાણું કાંઈ. જેમ નાટકમાં પુરુષ સ્ત્રીનો વેશ પહેરીને આવે તો જોનારા લોકને એમ કહે કે આ સ્ત્રી છે, પણ તે પુરુષ તો પોતે એમ જ માને કે હું પુરુષ છું અને સ્ત્રીનો તો મારો ભેગ છે. તેમ ધર્મી જીવને શરીરાદીનો ભેગ ગમે તે જાતનો હોય પણ હું આત્મા છું અને આ શરીરાદી જૂઠા ખેલ છે એમ માને છે. અરે, સેવકપણાનો ખેલ ભેગ હોય ત્યારે ત્યારે પણ એ ખોટો ખેલ છે, હું એમાં રમતો નથી એમ જ તે માને છે. આહા, અમે જ્યાં રમીએ છીએ ત્યાં શુદ્ધાત્મામાં આ પરવિષયો છે જ નહીં, છે નહીં અને એમાં અમે છીએ જ નહીં. આમ ધર્માત્મા માને છે. આમ પરવિષયના ફળના સ્વામિત્વથી રહિત જ્ઞાની સેવતો સ્વામિત્વથી રહિત જ્ઞાની સેવતો છતાં અસેવક છે. લ્યો આવો ધર્મ બાપુ. ધર્મ કોઈ અસાધારણ અલૌકિક ચીજ છે. દયાદાન ભક્તિ આદિ કરે અને માને કે ધર્મ થઈ ગયો, પણ એમાં તો ધૂળે ધર્મ નથી. સાંભળને, એ તો બધો રાગ પુણ્યબંધનું કારણ છે, અને એમાં ધર્મ માને તો મિથ્યાત્વ છે. એ તો ખાલી ડિસ્ક્રિપ્ટિવ, ઇસમે કોઈ તત્વ કી બાત વિશેષ રૂપ સે નહીં હૈ. આય કહે છે, ભગવાન આત્માના આનંદનું જ્યાં ભાન થયું ત્યાં આખી દુનિયા પ્રત્યેની અશુદ્ધતાનો એટલે અભિપ્રાયમાં સમસ્ત શુભ અશુભ ભાવોનો ત્યાગ થઈ જાય છે, અને તે સાચો વૈરાગ્ય છે. આવો વૈરાગ્ય જેને પ્રકટ થયો છે તે સેવક છતાં અસેવક છે. જ્યારે મિથ્યાદૃષ્ટિ બહારનું બધું ત્યાગે છે, સ્ત્રી કુટુંબ આદિ છોડી બાવો થઈ જાય છે, પણ અંતર અનુભવ વિના દૃષ્ટિ મિથ્યા છે, રાગની રૂચિ છે, તો તે અસેવક બહારથી સેવતો નથી, છતાં પણ તે સેવક જ છે. ભાવાર્થ ઉપરનું પ્રવચન. દ્રષ્ટાંત આપે છે, કોઈ શેઠે પોતાની દુકાન પર કોઈને નોકર રાખ્યો. દુકાનો બધો વેપાર વણજ, ખરીદવું વેચવું વગેરે સર્વ કામકાજ નોકર કરે છે, તો પણ તે વેપારી નથી, કારણ કે વેપારનો અને વેપારના લાભ નુકસાનનો સ્વામી નથી, તે તો માત્ર નોકર છે. શેઠનો કરાયવો બધું કામકાજ કરે છે. જો દુકાનનું બધું જ કામકાજ નોકર કરે તો પણ તે વેપારી નથી, કારણ કે તે નફા નુકસાનનો સ્વામી નથી, તેથી ખરેખર તે વેપારના કાર્યનો માલિશ કરનારો છે, માલિક. તે વેપારના કાર્યનો માલિક કરનારો નથી, માલિક નથી અને વેપાર કરનારો નથી. જ્યારે જે શેઠ છે તે વેપાર સંબંધી કંઈ કામકાજ કરતો નથી, ઘેર બેસી રહે છે, તો પણ તે વેપારનો અને વેપારના લાભ નુકસાનનો ધણી હોવાથી તે જ વેપારી છે. આહા, દાખલો તો જુઓ. વેપારનું કાંઈ પણ કામ ન કરે તો પણ શેઠ વેપારનો કરનારો છે. હવે કહે છે, આ દ્રષ્ટાંત સમ્યક દ્રષ્ટિ અને મિથ્યાદૃષ્ટિ પર ઘટાઈ લેવું. આહા, શુદ્ધ ચિદાનંદ. યે દેખને કે સમ્યક દ્રષ્ટિ કા ક્યા કામ હૈ ઓર મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા ક્યા કામ હૈ. યે સમ્યક દ્રષ્ટિ હૈ ના, વહ તો કામ કરને વાલા જો હૈ, હા, યાને કરતા હુઆ ભી કરને વાલા નહીં હૈ, સેવક સેવતે હુએ ભી અસેવક હૈ. ઓર યે જો શેઠ હૈ વો કુછ નહીં કર રહા હૈ, ફિર ભી વો કરને વાલા હૈ, એસા સેવક હૈ, એસા કહે રહે. આ દ્રષ્ટાંત સમ્યક દ્રષ્ટિ અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ ઉપર ઘટાવી લેવું. જો આહા, શુદ્ધ ચિદાનંદ ઘન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છે, તેમાં અંતર્મુખ થઈ અનુભવ કરતા અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવવો, અને આવો હું આનંદ સ્વરૂપ પૂર્ણ પરમાત્મા છું એવી પ્રતીતિ થવી, તે સમ્યક દર્શન છે. આવા સમ્યક દર્શન વિના જૈન ધર્મ શું ચીજ છે એ લોકોને ખબર નથી. બાપુ, સમ્યક દર્શન એ જ ધર્મનું પહેલું પગથિયું છે, અને આત્માનુભવની સ્થિરતા દૃઢતા થવી તે જૈન ધર્મ છે. અભી ઇન્હોને એક કદમ આગે કી બાત બતાઈ, એસા કહે રહે ના કે સમ્યક દર્શન હોના વહી ધર્મ કી પહેલી સીડી કહે રહે, ઓર યહાં કહે રહે એ પહેલું પગથિયું છે, ઓર આગે ક્યાં બઢાતે, આત્માનુભવની સ્થિરતા એટલે દૃઢતા થવી તો જૈન ધર્મ લે, વો જૈન ઓર યે જૈન ધર્મ લે. આ સિવાય વ્રત તપ દયા દાન આદિ કાંઈ ધર્મ છે એમ નથી. ભાવ પૌરની ગાથા ત્રાસીમાં આવે છે કે પૂજા વંદન વૈયાવૃત્ત અને વ્રત એ જૈન ધર્મ નથી, એ તો પુણ્ય છે. જુઓ, ગાથા जुओ गाथा त्या शिष्य प्रश्न कहिरो के धर्म का क्या स्वरूप है। उसका स्वरूप कहते हैं कि धर्म इस प्रकार है। अभी गाथा का अर्थ भी दिया है। जिन शासन में जिनेन्द्र देव ने इस प्रकार कहा है कि पूजा अधिक में और व्रत सहित होना है वह तो पुण्य ही है, तथा मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम वह धर्म है। यानी जब आत्मानुभूति होती है, चारित्र में स्थिरता होती है, तब क्या होगा, शुद्ध परिणति चालू होगी, शुद्ध उपयोग चालू होगा। उस वक्त कहते हैं मोह और क्षोभ रहित आत्मा का वह परिणाम है। और जब आत्मा में लीनता नहीं है, जब आत्मा से जीव उपयोग बाहर आता है उसका, तब उसके क्रोध मान माया लोभ चालू हो जाते, तो क्षोभ सहित परिणाम चालू हो गए उसके, मोह और क्षोभ। गाथाना भावार्थमां कहूं छे के लौकिक जन तथा अन्यमति कई कहते हैं कि, यानी अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि पूजा आदि शुभ क्रियाओं में और व्रत क्रिया सहित है वह जैन धर्म है, परंतु ऐसा नहीं है। जिन मत में जिन भगवान ने इस प्रकार कहा है कि पूजा दिक में और व्रत सहित होना है वह तो पुण्य है, इसका फल स्वर्गाधिक भोगों की प्राप्ति है। आवात अज्ञानी ने आकरी लागे छे पण शू थाय, अनादिनो मार्ग जा छे। छेल्ले त्यां भावार्थमां खुलासो कर्यो छे, जो केवल शुभ परिणाम ही को धर्म मानकर संतुष्ट है उनको धर्म की प्राप्ति नहीं है। यह जिनमत का उपदेश है। देखो अभी हमने, आपको याद होगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के क्लास में हमने यही बात उठाई थी कि यहाँ हम स्वाध्याय कर रहे हैं वह शुभ भाव ही है, हाँ शुभ परिणाम ही है, और वो धर्म मानकर संतुष्ट मत होना। अरे इतना तो हम करते हैं, ऐसा शुभ भाव मानकर भी उसमें संतुष्ट नहीं होना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो केवल शुभ परिणाम ही को धर्म मानकर संतुष्ट है उनको धर्म की प्राप्ति नहीं है। अज्ञानी ने अशुभति बचवा शुभ भाव हो, अशुभ वंचनार्थ शुभ हो, पण छेते पुण्य धर्म नहीं। आ सांभळी अज्ञानी राड पाड़ी उठे छे के तमे अमारा व्रत ने तप नो लोप करी दो छो, पण भाई तारे व्रत ने तप हताज की दी। अज्ञानी ने वळी व्रत ने तप केवा, ये ऐसा क्यों कहा है? अज्ञानी ने वड़ी व्रत ने तप केवा। हाँ रश्मि बेन, ऐसा क्यों कहा है? हाँ अज्ञानी है ना, तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ आप क्या कहती मम्मी? दोनों वहीं के वहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। कौन बताएगा? नैन भाई आप बताएंगे? हाँ तो हाँ ये मूल बात है। क्या कहा समझ में आए? देखो आस्ते आस्ते पहुंचे, फिर भी मैं आगे की बात बताता हूँ। जो सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, उसके गुणस्थान का नाम याद है आपको? हाँ अविरति सम्यक दृष्टि। यानी क्या कहना चाहते, जो सम्यक दृष्टि होते हुए भी इनके व्रत नहीं होते। क्या व्रत तो कौन से गुणस्थान में होंगे? जोस्ती जोस्ती पांचवा। आप क्या कहते हैं? पांच में। आप क्या कहती बहन? मैंने प्रश्न पूछा व्रत कौन से गुणस्थान में होंगे? देखो देखो आप, हाँ जो व्रत कहो या संयमी कहो, व्रत वो तो अनुव्रत है, छोटे हैं, उसको भी व्रत नहीं कहते, व्रती कहो, संयमी कहो, महाव्रती कहो। हाँ, वो तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जीव के होते हैं, जो पंचम गुणस्थानवर्ती उसको विरता विरत कहते, संयमा संयमी कहते हैं। यानी अभी हम व्रत की भाषा ले रहे हैं ना, तो वो व्रती, सकल व्रती जिसको हम कहेंगे, ये अनुव्रती, फिर भी वो व्रत नहीं है पूरे। और चौथा जो है वो अव्रती है, और ये मिथ्या दृष्टि व्रत पालन करता है और मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। देखो देखो क्या कहा, कहां पढ़ा था हमने ये, हाँ हाँ, व्रतने तप केवा, किसको कहा व्रतने तप केवा, अज्ञानी ने वड़ी व्रतने तप केवा, कदाचित रागनी मंदता होय तो पन मिथ्यात्व सहित ज छे, एवा व्रतने तपने भगवान बाळ व्रतने बाळ तप, एटले के मूर्खाई भर्या व्रतने मूर्खाई भर्या तप कया छे। आई कहे छे, देखो यहां कह रहे ना भगवान ने बाळ व्रत कया छे, ये तो कुंदकुंदा आचार्य ने समय सार में बात बताई है, अभी आएगी, इधर ही आने वाली आगे। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो मिथ्यात्वी है उसके व्रत और तप होते ही नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्वी को भी अव्रती कहा है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, तो उसके नीचे के भूमिका वाले को व्रती कैसे कह सकेंगे, तो ये तो जानकारी नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा मानता है कि मैं तो बहुत व्रती हूं, मैंने तो बहुत तप किया है। तो कहते तीसरी लाइन में, आई कहे छे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्माना अनाकुल आनंदनो जेने स्वाद आयो छे ते समकीति ने कोई पण प्रकारना रागमा मिठाश नथी, तेने सर्व रागमा थी रस उड़ी गयो छे। आहा, जेम नौकर वेपार करनारो नथी तेम सम्यक दृष्टि विषय सेवनारो नथी, अने जेम सेठ वेपार करनारो छे तेम मिथ्या दृष्टि विषय सेवनारो छे। झीणी बात छे प्रभु, आत्मानो स्वभाव ज वीतराग स्वरूप छे, अने जैन धर्म पण वीतराग स्वरूप छे। जेटला ये आज्ञा ना लिखे ना, आत्मा ना चाहिए, वो आज्ञा ना लिखा गया ना, आत्मा ना ऐसा लिखो, आत्मा ना कर, जेटला आत्मा ना कर्तव्य कहया छे ते बधाए वीतरागतानी ज पुष्टि रूपे कहया छे, राग ना पोषण माटे नहीं। राग नी वात कही छे पण ए तो ज्ञानी ने क्रमशः प्रकट थती अने वृद्धि पामती वितरागतानी साथे सहकारी केवो राग होय छे तेनु कथन कर्युं छे। यानी हम जो कह रहे हैं ना उनके महाव्रत है उनके अनुव्रत है, तो उसके साथ साथ जो शुद्धि है वो बताए कैसे कि किस प्रकार का राग वहां मौजूद है वो राग, क्योंकि राग से तो हम अधिक परिचित है ना, हमें तो वितरागता का स्वरूप ही मालूम नहीं है, तो कैसे समझावे। तो वहां जो बाह्य उनके जो कोई परिणाम हो रहे शुभ परिणाम, उस शुभ परिणाम को बताकर उनमें ऐसी वितरागता चालू है ऐसा बताएंगे। क्या कहा, देखो ये नीचे से पांचवी लाइन है, ए तो ज्ञानी ने क्रमशः प्रकट थती, क्रमशः यानी चौथे गुणस्थानवर्ती पांचवे गुणस्थानवर्ती छठे गुणस्थानवर्ती क्रमशः प्रकट थती अने वृद्धि पामती वितरागतानी साथे सहकारी राग, सहकारी केवो राग होय छे तेने कथन कर्युं छे, रागनी पुष्टि माटे तेनू कथन कर्युं नथी, व्रतादिनी वात जा करी छे त्या रागनु पोषण करावू नथी, परम क्रमशः थता रागना अभावनु पोषण करावू छे। और देखो चरणान योग में पूरी इसी तरह से बात आती है कि मुनि कैसे होते हैं, तो अभी जो वीतराग इतने इतने होते हैं वो क्या समझेंगे लोग, क्योंकि वीतरागता का तो कोई अंश भी यहाँ प्रकट नहीं हुआ है, तो उसका स्वरूप ही मालूम नहीं है, तो कहेंगे मुनि 28 मूल गुण पालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो हम तो ऐसा ही मान लेते हैं कि ऐसे 28 मुलकों का पालन करें तो हम हो गए मुनि, क्योंकि अंतरंग की जो कोई अवस्था है वह तो बता नहीं पाएंगे ना। अभी वो शुद्धोपयोग में लीन है, शुद्धोपयोग में स्थिर है, तो क्या है वो तो नहीं समझेंगे। इसलिए साथ में जो वर्तता हुआ जो राग है उसके माध्यम से उनकी भूमिका स्पष्ट की जाती है। जैसे हमने देखा ना, ये पंचम गुणस्थान वर्ती जीव होते हैं तो जैसे जैसे स्वरूप में अधिक अधिक गाढ़ श्रद्धा होती है या गाढ़ स्थिरता होती है जिसको हम कहेंगे, तो उसके अनुरूप उनके ऊपर ऊपर की प्रतिमाएं धारण करने का शुभ परिणाम भी होता है, तो हम वो प्रतिमाधारी उनको कहेंगे। तो प्रतिमाधारी यानी हमने मान लीजिए कि जो पहली प्रतिमाधारी जीव है वह भी पंचम गुणस्थानवर्ती, और 11वीं प्रतिमाधारी जीव वह भी पंचम गुणस्थानवर्ती, तो दोनों में क्या अंतर है? तो स्वरूप में जो स्थिरता जो है उग्र पुरुषार्थ रूप से, वो हमारे ख्याल में कैसे आवे, तो वहां उस प्रकार के जो राग है उसका वर्णन किया है। यानी होगा तो वितरागता और राग दोनों एक साथ ही, यानी हमें तो वितरागता आई नहीं लेकिन हमारा व्रत तो हमारा है, नहीं चलेगा। कोई कहता है नहीं नहीं हमारी वितरागता तो बहुत भगे, अभी खाली ये व्रत लेने के, तो दोनों ही सांचे नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ होंगे। वैसे यहाँ छठे गुणस्थानवर्ती जीव की बात है, मुनिराज अवस्था की, सातवें गुणस्थान की, तो यहाँ ये कह रहे हैं क्रमशः तथा रागना अभावनुज पोषण करावा माटे आ बधी वात कहेवामां आवी छे। हाँ तेथी आई कहूं के सम्यक दृष्टि विषय सेवनारो नथी, केम के तेने विषय में रस नथी, राग में आत्मबुद्धि नथी। परमात्मा प्रकाश में कहू छे ने के जे राग ने पोतानो मानी ने सेवे छे तेने आत्मा हेय तरीके वर्ते छे, अने जेने आत्मा तरीके आत्मा उपादेय तरीके वर्ते छे तेने राग हेयपने होय छे। बहुत अच्छा वाक्य दिया है, क्या कह रहे देखो, जे राग ने पोतानो मानी ने, यानी विभाव जो भाव है वह मेरा स्वभाव है एम मानी ने, ते राग ने जे सेवे छे तेने आत्मा हेय तरीके वर्ते छे, यानी वो आत्मा के प्रति उसका द्वेष चल रहा है, हाँ हेय है ना, और जेने आत्मा उपाधि तरीके वर्ते छे तेने राग हेय पने होई छे। ये बात समझ में आई ना? हाँ रश्मि बेन, ये बात ख्याल में आई? क्योंकि वह जीव कैसा है कि राग को ही अपना स्वरूप मान रहा है। हमने अभी आश्रय तत्व संबंधी भूल देखी ना, या तो जीव और अजीव में भी देखा था कि वह तो अपने में उठने वाले जो विभाव भाव है उसका मैं, वो उस रूप में हूँ ऐसा वह मानता है, यानी आश्रय को ही अपना स्वरूप मानता है। तो कहते उसको अपने स्वयं का आत्मा ही है, ही है, उसके प्रति उसको द्वेष बुद्धि है। वैसे यहाँ कह रहे कि जेने आत्मे आत्मा उपाधि तरीके वर्ते छे तेने राग ही अपने हुई छे। प्रवचन सारणी गाथा 136 आवे छे, 236 आवे छे के काया, देखो देखो काया तेमज कषाय ने, अभी हमने वहां देखा था हा? विभाव भाव यानी कषाय और पुद्गल के वो स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें भी बात लिखी थी। तो कहते हैं प्रवचन सारणी गाथा 236 आवे छे के काया तेमज कषाय ने जे पोताना माने छे बाह्यती छ कायनी हिंसा न करतो होय तो पन छ कायनी हिंसा नो करना रोज छे, क्योंकि उसने पंचेंद्रिय को ही छोड़ा नहीं है, तो बाकी भले ने छोटे मोटे को छोड़ दे तो उसने सबको ही। तेवी रीते अज्ञानी भारती विषय न सेवतो होय तो पन काया ने अने कषाय ने पोताना मानतो होवाथी कषाय नु फल जे विषय वासना थी युक्त विषय नो सेवनारो ज छे एम कही आई कहे छे। आहा मार्ग बहु जुदी जात नो छे बापा, देखो कैसी बात होती है, हमने देखा ना जो अनुव्रती होते हैं वे पहले में पहले त्रसे हिंसा से रहित होते हैं, अब उनके द्वारा स्थावर हिंसा होती हो, करने का इरादा नहीं है, भाव भी नहीं है, तो वहाँ पहले तो त्रस में पंचेंद्रिय भी लिए, ख्याल में है ना, और यहाँ क्या होता है कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव है भले न वो छह काय की दया पालने के परिणाम करता है लेकिन अपने स्वयं की दया नहीं पाल रहा है, वो तो महाहिंसा है बड़ी, ख्याल में है ना, तो वो तो कह रहे हैं कि छह काय नहीं बाह्य यदि छह काय नहीं हिंसा न करते है तो अपन छह काय नहीं हिंसा नो करना रोज छे, क्योंकि उसके आत्मा का ही अनुभव नहीं है, ये बात बता रहे हैं। अब एक कलश 136 47 पृष्ठ में,
हाँ 47
हाँ बंदा क्रांत
सम्यक दृष्टेर्भवति नियतम् ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्ति मुक्त्या यस्माद् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन् आस्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगात्। नीचे अर्थ दिया है श्लोकार्थ में, सम्यक दृष्टे है नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति भवति, सम्यक दृष्टि ने नियम थी ज्ञान ने वैराग्य नी शक्ति होय छे, यस्मात कारण के अयम एटले ते कौन सम्यक दृष्टि जी स्वम अन्य रूप आपति मुक्त्या स्वरूप नु ग्रहण अने परनो त्याग करवानी विधि वड़े स्वम वस्तुत्वम कलयितुम पोताना वस्तुत्वनो एटले यथार्थ स्वरूपनो अभ्यास करवा माटे इदम स्वम च परम आ स्व छे अर्थात आत्म, वो आत्म हुआ है उसको आत्म करना अर्थात आत्म स्वरूप छे अने आ पर छे व्यतिक्रम एवो भेद, क्या कहना चाहते स्व और पर का भेद, तत्वता परमार्थे ज्ञात्वा जानीने स्वस्मिन आस्ते स्व मां रहे छे टके छे, पहले में पहले स्व और पर का भेद जानकर अभी स्व में जो टिकता है रहता है स्थित होता है, अने परात राग योगाद परथी एटले रागना योग थी सर्वतः सर्व प्रकारे विरमति विरमे छे, आ रीत ज्ञान वैराग्यनी शक्ति विना होई शके नहीं। दोबारा पढ़ते इसको, सम्य दृष्टि ने नियम थी ज्ञान ने वैराग्यनी शक्ति होई छे, कारण के ते सम्य दृष्टि जीव स्वरूपनो ग्रहण अने परनो त्याग करवानी विधि वड़े पोताना वस्तुत्वनो यथार्थ स्वरूपनो अभ्यास करवा माटे आ स्व छे अर्थात आत्म स्वरूप छे अने आ पर छे एवो भेद परमार्थे जाणीने स्वमां रहे छे टके छे अने परथी एटले रागना योगथी सर्व प्रकारे विरमे छे, आ रीत ज्ञान वैराग्यनी शक्ति विना होई शके नहीं। अब 55 पृष्ठ,
यानी यहाँ जो बात है ना कि इसके पहले जो बताए थे ज्ञान और वैराग्य का जो बल है उसकी बात हम बता रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं कि आज बात ने दृष्टांत थी प्रकट समझावे छे, और यही बात ये श्लोकार्थ में भी वही बात बताई है कि ज्ञान वैराग्य की शक्ति बिना आत्मा का अनुभव और राग के तरफ की जो कोई कम अट्रैक्शन है वो होता नहीं। अब हम बाकी की बात कर लेंगे, ये 54 पृष्ठ पर से चालू करेंगे। हा? जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकण सदा देत हो रो।